ओम शांति। सबसे पहले हम दीदी का स्वागत करेंगे। वेलकम दीदी। दीदी का इतना इजी नेचर है, जो फोन किया आप आएंगे तुरंत, हाँ कुछ भी नहीं, तो मुझे बहुत पसंद आया और मुझे लगता है मुझे भी ये अभ्यास करना पड़ेगा। कौन है जो दीदी के पहली बार मिल रहे हैं? काफी, अच्छा ठीक है, ओके। निर्मला दीदी जो 50 साल से ज्ञान में है और ज्ञान में आने के चार बाद सेवा सेंटर पर रहने लगे। वैसे मेडिकली क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और उसने 10 साल तक मेडिकल प्रैक्टिस भी की। और दीदी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसको शादी नहीं करनी थी, सेवा में जीवन देना था, तो उसके पिता ने उसको दहेज में सेंटर दिया, बराबर ना? हाँ, तो तब से वो सेंटर की संचालिका रही है और बॉम्बे में ज्ञान लिया, बॉम्बे में ही सेंटर चलाती थी, तो 46 इयर्स से सेंटर पर है। 71 में लंदन भी आए थे और उसके पहले मेरे ख्याल से युगांडा में भी गए थे ना आप दीदी?
बाद में
गए थे, क्योंकि मैंने सोचा कि युगांडा में आए और मैं युगांडा में थी और मुझे दीदी नहीं मिली तो मैं ज्ञान में लेट आई, ऐसा सोच रही थी
मैं। बाद में गए 72 में गई थी
और 78 में आप नैरोबी आए।
या
सो 78 में नैरोबी आए,
उस समय 72 में मैं नैरोबी गई थी। मैंने तीनों कंट्री का सफर किया, तंजानिया,
युगांडा
और युगांडा।
परंतु फिर दोबारा आप नैरोबी में आए 78 में, तब मेरा जन्म हुआ। दीदी ने पहला लेसन मुझे दिया और मुझे याद है मैं बहुत रोई थी पहले लेसन में, और दीदी ने कहा कि आप इतनी पढ़ी लिखी हो तो रोती है इतना। तो मैं इस घर जाकर सोचने लगी कि क्या पढ़े लिखे है तो रोने का हक नहीं है। परंतु वो पहले लेसन ने मुझे सारा, जैसे कि मेरी आंख खोल दी, क्योंकि मैं साइंस सब्जेक्ट वाली, साइंस में मानने वाली, और कहती थी साइंस प्रूफ देंगे तो ही मैं मानूंगी कि आत्मा है। परंतु दीदी ने इतनी सिंपल भाषा में मुझे समझा दिया तो जैसे कि अंदर ही सारा ज्ञान बैठ गया। तो 78 में वो नैरोबी सेवा में थी और उसके बाद 75 से ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलेशिया जो बोलते हैं हमें, वहां सेवाएं दे रही है। और 2009 में मनहर दादी ने जब शरीर छोड़ा उसके बाद बाबा ने उनको ज्ञान सरोवर में बिठाया है और ज्ञान सरोवर वाले तो बहुत खुश है दीदी आपसे। तो वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव दीदी विथ अस टुडे। थैंक यू।
ओम शांति। बाबा को पहली बार कौन मिले इस तो एक है बाबा को जानना, दूसरा है बाबा को मिलना, पहचानना। तो क्या है कि बाबा को भक्ति में हम याद करते रहे, महिमा करते रहे, परंतु अभी बाबा को जाना, पहचाना, तो ये हमारा भाग्य है। तो बाबा हमें ये नया ब्राह्मण जन्म दिया। तो कल जैसे शिव जयंती तो थी, परंतु हमारी भी जयंती थी, तो बाबा ने हम सभी को मुबारकबादी दी, हम सभी ने बाबा को मुबारक ही दी। तो एक दो को मुबारक देने का समय था। तो कल बहुत खुशी हुई ना सबको, हाँ? क्या कहें, अभी ही मैं ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से मिली तो सभी कहते थे कि बहुत मजा आया बाबा को मिलकर। और कई है जो 25-30 साल से ज्ञान में है, एक दो ने तो कहा कि इस बार की विजिट हमारी बेस्ट विजिट थी, बाबा से मिलने का बहुत हमें प्यार मिला, आनंद मिला। तो हम देखते हैं कि सोचती थी देखो बाबा का साकार में जब पार था विशेष ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, सबने अनुभव किया बाबा से। तो साकार में बाबा ने 39 वर्ष तक ज्ञान दिया, नहीं 33 साल दिया, 33 साल दिया साकार में, 33 साल दिया और सब ज्ञान दे दिया। आप देखेंगे अव्यक्त मुरली में कुछ नया नहीं दिया है। हाँ, 69 तक जो ज्ञान देना था बाबा ने दे दिया। फिर 69 के बाद अव्यक्त पाठ चला। तो अव्यक्त पाठ में बाबा ने क्या किया, विशेष धारणा की पॉइंट पर हमें मजबूत कराया, ठीक है ना। आप देखेंगे अव्यक्त मुरली धारणा की है, साकार मुरली ज्ञान की गहराई की है। तो भल कई ब्राह्मण है उनको अव्यक्त मुरली बहुत अच्छी लगती है, साकार में इतना मजा नहीं आता। तो दादी एक बार कहती थी साकार मुरली है जैसे रोज का खाना दाल चावल सब्जी रोटी, और अव्यक्त मुरली है जैसे केक, केक बहुत मीठी लगती है पर रोज केक नहीं खाएंगे ना, मिठाई रोज नहीं खाएंगे, संडे संडे खाते हैं, संडे विशेष खाना पकाते हैं ना इंडिया में, विदेश में भी तो ऐसे ही होगा क्योंकि विदेश में तो टाइम ही नहीं मिलता है रोज कुछ विशेष खाना बनाने का, तो सैटरडे संडे ही खाना विशेष बनाते हैं। तो इसलिए अव्यक्त मुरली सिर्फ संडे संडे सुनाते हैं, स्पेशल भोजन केक। तो अव्यक्त मुरली भी आप देखेंगे इस वर्ष की लहर बिल्कुल अलग है ना। इतना साल वो धारणा की पॉइंट भी दीप में देते रहे, क्यों क्या कैसे, ना करने से क्या होगा, करने से क्या होगा आदि धारणा में पक्का कराया। और इस वर्ष आप देखेंगे बाबा का जैसे विशेष प्यार के सागर का सर्वशक्तिमान, नहीं जैसे सबको ऐसे अनुभव होता है इतना पावरफुल वाइब्रेशन हो गया था, और जो भी है जहां भी बैठे हैं उनको इतना जैसे प्यार की अनुभूति हुई, खुशी की अनुभूति हुई। तो ये क्या हुआ, बाबा का भी प्यार के सागर, शक्ति के सागर का, सर्वशक्तिमान का पाठ चल रहा है। थोड़ी मुरली आजकल मुरली छोटी, एक दो घंटे में बाबा रवाना हो जाते हैं, और रवाना भी ऐसे हो जाते हैं ब्रिजभवन भाई गाता रहा खुशी खुशी से, उनको मालूम ही नहीं पड़ा बाबा चला भी गया तो क्या है कि अभी बाबा का जैसे दिन प्रतिदिन पाठ बदलता जाता है, क्योंकि शुरू शुरू में तो एक बारी तो बाबा शाम को 6 बजे आए थे, दूसरे दिन सवेरे 10 बजे गए, ये सुखधाम का उद्घाटन करना था तो सवेरे सुखधाम का 10 बजे उद्घाटन करके बाद गए, तो इतने घंटे तक बैठे रहते थे क्योंकि रथ थोड़ा पावरफुल था, यंग था ना। अभी तो रथ भी बेचारा ओल्ड होता जा रहा है तो देखे नेचुरली ये रथी को भी संभालना पड़ता है कि रथ को बहुत ना चलाए, नहीं तो घोड़ा बैठ जाएगा तो इसलिए हम देखते हैं पाठ में चेंज आती रहे। और बाबा शुरू से कहता रहा कि दिन प्रतिदिन कुछ नवीनता, क्योंकि उन दिनों में तो हमारे एक एक से पांच पांच मिनट बोलता था, बात करता था। और राजू भाई अपना मुरली का बता रहा था कि एक दिन मधुबन वासियों के साथ रात को बैठा तो उन्होंने जो वरदान दिया 300 के ऊपर वरदान दिए, वो लिखता गया सारा। अभी ये वरदानों में वही वरदान लिखता रहता है मुरली में। तो क्या है कि इतने बाबा ने वरदान दिए हैं सभी को, और जब ये फील करते हैं कि सारी मुरली मेरे लिए है तो नेचुरली है सारी मुरली का हमको वरदान मिल गया। नहीं तो सोचते थे नहीं, उन दिनों में तो किसी को बाबा ने पांच मिनट बात की बहुत खुश हो जाता था, किसी से दो मिनट बात होती थी तो नाराज हो जाता था, मेरे से तो इतना ही बोला बाबा, तो कहते थे मुझे फिर से बाबा के सामने बिठाओ। तो क्या होता था, एक एक को इतना टाइम मिलता था। तो अभी रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है, रिवाइज कोर्स भी हो गया रियलाइजेशन। तो बाबा अभी हमें कहते हैं अपने आप को रियलाइज करो, क्या है, क्या बनना है मालूम है, कैसे बनना है ये मालूम है, अभी आप क्या बने हो देखो, समय थोड़ा है और लक्ष्य सभी का एक है, पढ़ाने वाला एक है। तो अभी समय थोड़ा है, घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं समय थोड़ा है, इस समय में थोड़े समय में तीव्र पुरुषार्थ कर अपना लक्ष्य जीवन का एम जो है वो अभी प्राप्त करो, नहीं तो क्या होगा, टाइम नहीं रहेगा। तो इसलिए कल भी बाबा ने मुबारक से तो शुरुआत की मुरली और रिमाइंड कराया कि आपका पूजनीय जन्म है, कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना नशा होना चाहिए कि हम क्या है, किसके बच्चे हैं। आज भी बाबा फिर से रिमाइंड करता किसके बच्चे हो, कौन आपका टीचर है, और क्या बन रहे हो, नई राजधानी के मालिक बन रहे हो। जब ये स्मृति रहेगी तो कितनी खुशी और नशा रहेगा। तो इसलिए इस जन्म का महत्व नहीं भूलना है, जो बाबा कहते हैं वाह मेरे बच्चे, तो हमें भी कहना है वाह मेरा भाग्य, समझा, घड़ी घड़ी ये कहो वाह मेरा भाग्य, वाह मैं, क्योंकि मैंने देखा है आजकल मेन वीकनेस सम्मान की कमी है। क्योंकि हम लोगों को आदत पड़ी हुई है एक दो से भेंट करने की, और मटीरियलिस्टिक दुनिया में पहले तो हम मटीरियलिस्टिक वैभव देखते हैं, मेरे पास क्या है क्या नहीं है, नहीं है तो सोचते हैं ठीक नहीं, मेरे पास कमी है। तो इसलिए मटीरियलिस्टिक वैभव के पीछे नहीं पड़ना है, अभी वैराग्य लाना, और जो अविनाशी प्राप्ति की है वो देखते रहेंगे तो स्वमान में रहेंगे, नशे में रहेंगे। मैं कौन हूँ, किसका बच्चा हूँ, किसका स्टूडेंट हूँ, हमारा गुरु कौन है, और हम क्या बन रहे हैं, ये बुद्धि में रहने से बहुत खुशी तो क्या नशा रहेगा, तो इसलिए बाबा इस सीजन की मुरलियों में हर एक में खुश रहो, संतुष्ट रहो, प्रसन्न रहो कहते रहते हैं। तो इसलिए देखना है कि हम कभी कभी असंतुष्ट तो नहीं होते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी क्या है, सिंप्लिसिटी, सादगी। तो जितनी स्पिरिचुअलिटी होंगी इतनी हमारी लाइफ सिंपल होंगी, तो फिर क्या होगा, आशा, इच्छा, आकांक्षा नहीं होंगी, तो फिर निराशा नहीं होगी। यदि हम की हमारी इच्छा है, इच्छा पूरी नहीं होती है तो निराश हो जाते हैं, औरों के साथ हम अपने आप को कंपेयर करेंगे और देखेंगे हमारे में इतनी लायक नहीं है, तो क्या होगा, उदासीनता आ जाएंगी, सम्मान की कमी हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास जो है वो देखो। दूसरा, तो एक तो पूजनीय जन्म की याद दिलाई, अलौकिक जन्म की, फिर बाबा ने कल विशेष जोर दिया निर्विघ्न रहने का। क्योंकि ये कलयुगी संसार है, भले हम संगम युगी है, परंतु हिसाब किताब हम लोगों ने पूरा नहीं किया है ना। जब तक कर्मातीत अवस्था बने, कर्मों का हिसाब किताब है, तो कर्मों का हिसाब किताब कैसे होगा, सबसे पहले धन। क्योंकि आज हम देखते हैं कि कईयों का जॉब में रिडंडेंसी हो जाती है, कंपनियां कई बंद हो जाती है, छोटी छोटी कंपनियां कई बंद हो जाती है, और जो उसमें काम करने वाले हैं नंबर घटा देते हैं, चाहे गवर्नमेंट भी है, चाहे बैंक्स भी है। आज कई बैंकक्रप्ट हो गए हैं। तो इसलिए क्या है कि हो सकता है धन की कमी हो, परंतु ये देखना है जब हमारा लाइफ सिंपल है, तो फिर बाबा कहते पेट को कितना चाहिए, दो रोटी, सब्जी ना है तो भी मिर्ची के साथ खा सकते हैं। जैसे बाबा कहते हैं यहाँ के मजदूर है, भील लोग है, क्या खाते हैं, डोडा, बाजर का रोटली, ज्वार की रोटी और नमक और मिर्ची, उनका आचार वही है, नमक और मिर्ची, हरी मिर्ची और नमक। तो क्या है, उससे चल जाता है उनको। तो इस रीत से एक तो ये रखो अपना सिंपल जीवन, दूसरा क्या है कि हमने देखा है कि जितना ब्राह्मण है ऑनेस्टली काम करते हैं, और ब्राह्मण बनने से हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ती जाती है। ज्यादा हम थोड़े समय में अच्छा काम करते हैं, हमारा संबंध सब साथियों के साथ अच्छा रहता है, जो कलीग्स होते हैं उनके साथ, तो उससे क्या होता है कि ऑनेस्टली काम करने के कारण जो बॉस होता है उनको अच्छे लगते हैं हम लोग ब्राह्मण। और जितना बाबा पर विश्वास होगा ना, बाबा पर ड्रामा पर हमारा विश्वास होगा, बाबा मदद करेगा। परंतु यदि हमको कोई शंका है, डर है, क्या होगा, कैसे होगा, हमारा जॉब जाएगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, बाबा कहते संशय बुद्धि विनश्यन्ति। जितना संशय होगा रिजल्ट भी ऐसा होगा। तो इसलिए देखना है कि हम मन में संशय ना लाएं, विश्वास रखें कि बाबा देखने वाला है, बाबा देखेंगे। तो हम उसमें एक मिसाल जरूर देती है कि ऑस्ट्रेलिया में एक भाई है, वो एनसेट एयरलाइंस में काम करता था और वो एयरलाइन बैंकरप्ट हो गई, बंद हो गई। वो इंजीनियर था तो उसे क्या हुआ कि एयरलाइंस ने अपने एयरक्राफ्ट तो रख दिए थे तो उनको इंजीनियर की तो जरूरत थी, तो उसका काम चालू रहा, बाकी सारा स्टाफ को छुट्टी मिल गई ना। एक दिन आते हैं एयरपोर्ट पर, देखते हैं एयरपोर्ट बंद, पहले से कुछ नोटिस नहीं, काम करने आते हैं एयरपोर्ट बंद। तो भाई को तो नौकरी चालू रही, फिर वो एयरलाइंस उन्होंने दूसरी एयरलाइंस को बेच दिया, तो विमान तो वही रहे, तो उसको रिपेयर करने के लिए उसको वहां भी नौकरी मिल गई। तो अभी तक वो उसी नौकरी में है इंजीनियर की। तो क्या है कि जब हमारा बाबा पर विश्वास होता है तो बाबा कुछ न कुछ मदद कर देता है। इसलिए बाबा ने कल भी बताया दो बातों पर विशेष फोर्स दिया, एक तो निर्विघ्न रहना है, व्यर्थ संकल्प भी नहीं करना, क्योंकि टाइम बहुत वैल्यूएबल है। नहीं नहीं तो जिसको विश्वास नहीं है पूरा तो क्या सोचेगा, क्या होगा, कैसे होगा, नौकरी जाने के पहले ही सोचेगा क्या होगा, कैसे होगा, फलाने को छुट्टी दे दी, फलाने को छुट्टी दे दिया, अभी हमारा टर्न आएगा, तो सोच सोच में चिंता में पड़ जाते हैं। परंतु जब ड्रामा पर विश्वास होगा, बाबा पर विश्वास होगा, तो हम अचल अडोल रह सकेंगे, नहीं तो बहुत व्यर्थ संकल्प आएंगे। इसलिए धन की कोई भी कमी हो हमें चलाते रहना और बाबा के ऊपर भरोसा रखना। दूसरा, तन की बीमारी होंगी, विघ्न आते हैं तन की बीमारी, खुद की या परिवार में होना ही है, क्योंकि कलयुग है ना, खाना भी हमारा ऐसा है फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स से भरा पड़ा, इसलिए जो हमारे बाप दादा थे उनको तो फ्रेश एयर मिलती थी, हम लोगों को क्या है, एयर कंडीशन रूम में सारा दिन रहना है, या तो एयर कंडीशन चलती है या तो हीटिंग चलती है, बाहर हार्डली जाते हैं ना, वॉक नहीं करते हैं, बाहर गए तो बस पकड़ी या ट्रेन पकड़ी या कार है इस दरवाजे में, तो चलना बंद हो गया, एक्सरसाइज बंद हो गई, फ्रेश एयर बंद हो गई, खाना भी ताम ये हो गए, उसमें भी सात्वक नहीं रहा ना, सत्य नहीं रहा ना, फर्टिलाइजर सारे केमिकल्स वगैरह आते हैं। तो इसलिए क्या है कि भल आज हम समझते हैं साइंस ने हमको बहुत मदद की है, परंतु हमारे बाप दादा की तबीयत अच्छी रहती थी ना हम लोगों से, कितना मेहनत करते थे ना, हमारी माँ कहाँ कहाँ से पानी भर के आती थी गांव में, तो इतना, अभी तो नल घर में है सिर ऑन करो, ऑफ करो, रिपेयर कराओ, परंतु कुछ काम नहीं, मेहनत का काम नहीं ना। आज देखो कोई मजदूरी नहीं करना चाहेगा, कोई खेती नहीं करना चाहेगा, सब व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, ऑफिस काम। तो क्या है इस कारण आजकल हम देखते हैं कि लोगों को इतना फायदा नहीं है, तबीयत ऐसी अच्छी नहीं रहती, कितने कितने बीमारियां होती रहती हैं। हम जब मेडिसिन में पढ़ते थे तो कहते थे कि 40 वर्ष के बाद यदि आप कहां भी आप वो ट्यूमर देखो, गांठ देखो, तो समझो कैंसर है। जब तक प्रूव नहीं हुआ है कि कैंसर नहीं है, तब तक समझना है कैंसर है। अभी क्या है, 10-12 साल वाले को भी कैंसर, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, तो कितना छोटे छोटे बच्चों को होता है। और कोई भी कहेगा मेरे में बैक में दर्द है, हेडेक है, पाँव में दर्द है, सब छोटे बड़े यही कंप्लेन होंगी, हेडेक, बैक एक। तो क्या है कि तंदुरुस्ती नहीं रही ना इतनी, तो इसलिए बीमारी तो आनी है। घर में कोई ना कोई को बीमारी होंगी, कोई ना कोई को कैंसर होगा। तब बाबा कहते हैं बीमारी से भी घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी, क्योंकि चिंता चिता समान है। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा भल आपको दोनों का बैलेंस रखना है, शरीर की भी संभाल रखो, आत्मा की संभाल रखो। बीमार है तो कर्म भोगना है करके रोते नहीं रहो, नहीं कभी कभी रोते हैं ना, ये होता है, यहाँ होता है, यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, खाना अच्छा नहीं लगता है, आदि आदि सबको वही कंप्लेन करते रहेंगे। इसके बजाय बाबा कहते हैं कर्म योगी स्टेज में रहो, खुश रहो, खुशी जैसी खुराक नहीं। और यदि हॉस्पिटल में जाना है, बाबा कहते हैं उसको होली प्लेस समझो, हॉस्पिटल नहीं समझो, वहां भी जाकर सर्विस करो। नर्सिस है, डॉक्टर्स है, अन्य पेशेंट है, आपके मित्र संबंधी मिलने आते हैं, उन्हों की भी सेवा करो ना, नहीं तो क्या होता है वो मित्र संबंधी हार्डली आपको मिलते हैं। आप बीमार है तो मिलने आएंगे, उसको भी ज्ञान दे सकते हैं। इसलिए नेगेटिव संकल्प नहीं करो कि क्या हुआ, बीमार हो गए, अभी ये काम बाकी रह गया, ये काम बाकी रह गया, नहीं, परंतु बीमारी में भी पॉजिटिव संकल्प रखकर उस समय हम क्या कर सकते हैं ये सोचो, क्या नहीं कर सकते नहीं सोचो। तो इस रीत से बाबा ज्ञान की बातें देखते हैं, परंतु हमें देखना है कि हम ज्ञान स्वरूप बने, ब्रह्मा पर अडोल रहे। पॉजिटिव सोचेंगे तो कहेंगे चलो कर्मों का हिसाब किताब चुप्त हो रहा है। तो जितना योग में रहेंगे तो क्या होगा, इसलिए बाबा मेन बात हमको रोज मुरली में कहते हैं अशरीरी बनने का अभ्यास करो, मुझे याद करो। शरीर भान में आते तो दर्द मालूम पड़ता है ना, अशरीरी होंगे तो दर्द मालूम पड़ेगा नहीं मालूम पड़ेगा। तो इसलिए अशरीरी बनने का, योग में रहने का और विशेष बीज रूप स्थिति में रहने का अभ्यास करो, तो उससे क्या होगा, विकर्म विनाश होंगे। तो समझो कर्म भोग भी चुक्त होते जाएंगे। और तीसरा है, विघ्न आता है मित्र संबंधियों से, चाहे लौकिक है अलौकिक संबंधी है, उनसे विघ्न आते हैं ना, संस्कार भेद है, खिटपिट होती है, आपस में बोलचाल हो जाती है, मन मुटाव हो जाता है। तो इसलिए हमें देखना है कि मित्र संबंधियों से भी चाहे वो कुछ भी करे, हमें क्या करना है। तो बाबा कहते हैं गाली देने वाले को गले लगा, निंदा जो हमारी करते हैं उसको मित्र समझो। तो जितना हम बाबा की बातों को प्रैक्टिकल में लाएंगे तो उनके प्रति वैर भावना नहीं होंगी ना, नहीं तो या तो गुस्सा आएगा, कोई गाली देगा तो गुस्सा आएगा। हम भी सामने गाली देते थे, और निंदा करने वाले को हम भी अपना वैरी समझते थे, दुश्मन समझते थे। अभी बाबा कहते हैं उसको मित्र समझो, और हरेक के प्रति जो जैसा भी है, जिस स्वभाव संस्कार का है, उसके प्रति क्या होना चाहिए हमारा, शुभ भावना, शुभ कामना, प्रेम की भावना। तो बाबा ने हमको खुद प्यार का सागर बनकर हमको क्या बनाया है, मास्टर प्यार का सागर। ठीक है, तो जब हम मास्टर प्यार का सागर बनेंगे तो नेचुरली कोई गाली देगा क्या, कोई निंदा करेगा क्या। तो इसलिए अपने आप को चेक करो, अपने आप को चेंज करो, अपने पर अटेंशन रखो। कल भी बाबा ने विशेष अटेंशन पर कहा, अटेंशन रखो। ये पुराने स्वभाव संस्कार के वश न हो जाए। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति है उसके साथ हमें देखना है कि हमारा उनके प्रति क्या भावना है, वो क्या भी है, कैसा भी उसका स्वभाव संस्कार है, मेरी भावना क्या है, मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ, ये देखना है, ताकि मैं कोई नेगेटिवली रिएक्ट ना करूं। फिर विघ्न आते हैं, मेन सबसे बड़े विघ्न है, क्योंकि हमारे पुराने संस्कार स्वभाव आदत। देखो कई लोग है ना, जब नए नए ज्ञान में आते हैं कहते हैं हमारी आदत है 7 बजे उठने की, जल्दी नहीं उठ सकते। आप मुझे कहो 2 बजे तक जागो, मैं जाग लूं, पर सवेरे नहीं उठ सकती है। हाँ? तो ये पुरानी आदत के वश हो जाते हैं, मतलब अपना कमाई का समय गंवाते हैं। जो कमाई मुख्य होती है अमृत वेले, तो वो समय गंवा दिया। तो इसलिए चेक करना है कि हम अपनी कमाई का समय गंवाए नहीं, और अमृत वेला जो बाबा की शिक्षाएं हमारे कल्याण के लिए, ये समझकर श्रीमत पर पूरा चलना है, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है, अपने आप को ढीला नहीं छोड़ना। नहीं, कई बार कईयों को गुस्सा आ जाता है, कहते क्या करे, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसे है, मैं मन में नहीं, मेरे मन में कुछ आपके लिए नहीं है, परंतु स्वभाव के वश गुस्सा आ जाता है। तो ये क्या है, अपने पुराने स्वभाव संस्कार आदतों से कभी हम मजबूर हो जाते हैं, ये ना रहें। सबसे बड़ा विघ्न वो है अपने ही स्वभाव संस्कार का। हाँ, तो इसलिए अभी हमको याद रखना है कि ये मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है, पुराना कुछ भी नहीं रहना चाहिए, पुरानी आदत स्वभाव संस्कार नहीं। अब मैं ब्राह्मण हूं तो मेरा स्वभाव संस्कार ब्राह्मणों का होना चाहिए। और अटेंशन रखकर वश न होकर उसी समय अपने आप को बदल देना, अटेंशन रखना कि कर्म में तो बिल्कुल ना आए, बोल में भी ना आवे, क्योंकि गुस्सा आएगा कोई कर्म में आ जाता है, एक दो लगा देता है, तो कर्म में तो नहीं आना है, बोल में भी नहीं आना, गुस्से से नहीं बड़े अबड़े आवाज से बोलते हैं वो भी नहीं करना, और संकल्प में भी ना। बाबा ने कल विशेष संकल्पों के ऊपर भी ध्यान खिंचवाया, क्या टेंशन रहे कि हमारे व्यर्थ संकल्प भी ना चले, नेगेटिव तो छोड़ो व्यर्थ संकल्प भी ना चले। तो इसलिए जितना अटेंशन रखेंगे और अपने आप को हमें रिमाइंड कराना है कि मैं भी ब्राह्मण हूं, मेरा स्वभाव ये होना चाहिए, मेरा ओरिजिनल संस्कार ये था तो ये ही होना चाहिए। हाँ, कलयुगी संस्कार को मेरा संस्कार स्वभाव नहीं कहना। और फाइनल जो हमारे सामने विघ्न आते हैं परिस्थिति के, उस परिस्थिति में हमारी स्वस्थिति कायम रहे। कभी एक्सीडेंट हो जाता, अपना घर वालों का अपनी प्रॉपर्टी का, उस समय हमारी स्वस्थिति शांत धीर्य गंभीर रहे, हाय हाय ना करें क्या होगा, चिंता ना करें, क्योंकि क्या क्यों कैसे वैसे ऐसे वैसे ये हमको बहुत आदत पड़ गई है सोचने की, अभी ये देखना है ये ना रहे। जो होता है ड्रामा अनुसार, ड्रामा और कर्मों की गति, ये दो पक्का होना चाहिए कि एक कर्मों का हिसाब किताब चुप्त हो रहा है, ड्रामा अनुसार हो रहा है, क्या होगा जो होना होगा होगा, अच्छा ही होगा। तो नॉलेजफुल हैं हम, क्यों क्या कैसे नहीं कर सकते हैं, हर एक का जवाब होना चाहिए हमारे पास, क्यों हुआ, होना था हो गया नामानुसार, क्या होगा जो होना होगा होगा, अच्छा ही होगा। तो ये पाठ पक्का करना है। कोई मर जाता है तो मर जाता है तो क्या होता है, मरने वाला तो मर गया, जिंदा है उसकी क्या हालत हो जाती है, जितना लगाव होगा उतना दुख होगा, ठीक है ना। ज्ञान तो है कि हर एक अपने अपने टाइम पर शरीर छोड़ने वाले हैं, ज्ञान है पक्का, परंतु फिर भी क्या होता है, ज्ञान होते भी फिर भी हम वो हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं न्यारा और प्यारा बनो, प्यार भी रखो सबके साथ परंतु लगाव भी ना हो, ममत्व भी ना हो, मेरापन ना हो। बाबा ने ये पाठ तो बहुत बार पकड़ा, मैं और मेरा ना हो, उसका त्याग करो। तो क्या है कि कोई भी मौत हो जाएगा ठीक है, उसका पाठ पूरा हुआ, आत्मा तो अजर अमर है ना, रोते क्यों है, कि क्योंकि अपने को जो लाभ मिलता था उसका उसे वो नहीं मिलेगा, स्वार्थ का होना होता है ना, कि वो था हमको प्यार करता था, हमारा ये काम हो जाता था वो काम हो जाता, अभी कौन करेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं भले प्यार रखो, उनको मदद करो, उनकी मदद लो, परंतु आधार नहीं होना चाहिए। एक आधार बाबा का हो। तो जब बाबा से सर्व संबंध प्यार के जुट जाएंगे तो मनुष्य आत्माओं के साथ लगाव नहीं रहेगा, क्योंकि मनुष्य आत्मा तो हमको हद की प्राप्ति कराएगा, बाबा बेहद की प्राप्ति, सर्व संबंधों का सुख देने वाला। नेचुरल कैलेमिटीज होने वाली है वह बाबा ने तो पहले से बोल दिया था, और अभी भी देख रहे हैं ना कई देशों में कितनी बाढ़ आती है, कहाँ सूखा है, कहाँ हेल है, कहाँ स्टॉर्म है, कहाँ बारिश है, फ्लडिंग है, तो ये अर्थक्वेक है, वॉल्केनो है, सब होता रहता है। पर अब तो लिमिटेड, अंत में तो बाबा ने कहा पांच तत्व पांचों खंडों में गड़बड़ करनेंगे, और भूतों की भी बहुत, इविल स्पिरिट की भी बहुत तकलीफ होंगी। तो इसलिए बाबा ने तो पहले से वार्न कर दिया है, अभी हमको अपनी स्थिति ऐसी मजबूत बनानी है कि हम ब्रह्मा को साक्षी बनकर देखें, तो हमारी अवस्था अचल अडोल रहेंगी। विघ्नों को पार करना है, विघ्न काय कितने भी आए ना, हाय हाय करेंगे तो बड़ा लगेगा ना। बाबा कहते हैं माउंटेन से मोल करो, पहाड़ को रुई समाज समझो, रुई को पहाड़ नहीं बनाओ। तो जितना हम ऊंची अवस्था से देखेंगे तो विघ्न बहुत छोटे लगेंगे, नहीं तो विघ्न बहुत बड़े लगते हैं। तो इसलिए हमें अपना ऊपर अटेंशन रखना है और रामा को साक्षी बनकर देखते रहो, और जो होता है जो भी कर सको जितना भी कर सको खुद करो, जितना भी औरों का सहयोग ले सको लो, परंतु घबराना नहीं है, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, टेंशन में नहीं आना है, ये ध्यान रहे। अटेंशन रहे, टेंशन ना आए। और विशेष बाबा जी व्यर्थ के ऊपर अटेंशन के चिचवाया, क्योंकि हम लोगों को परमत सुनने की, पर चिंतन करने की, पर दर्शन करने की बहुत बुरी आदत है और बहुत डीप आदत है, पुरानी आदत है ना। तो इसलिए ये हमको बुद्धि में रखना है, अपना अटेंशन रखना है कि हमारे सोच क्या चलते हैं, व्यर्थ चलता है क्या, जरूरी है क्या। तो नेगेटिव तो ना हो, परंतु व्यर्थ भी ना हो, इतने तक कि बाबा तो अभी कहते नॉर्मल भी नहीं करो, श्रेष्ठ संकल्प ही करो, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, नॉर्मल संकल्प हो गया ना, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ जाना है, सारा दिन सोचिए, तो नॉर्मल हो गया। परंतु बाबा तो अभी कहते हैं एलिवेटेड थॉट्स, श्रेष्ठ संकल्प करो। तो इसलिए अपने आप को चेक करते रहना है, क्योंकि आगे जाने के लिए चेकिंग बहुत आवश्यक है। यदि चेकिंग नहीं करेंगे तो पुरानी आदत स्वभाव संस्कार के वश हो जाएंगे डेफिनेटली। तो नेचुरली है अपना समय शक्ति व्यर्थ जाएंगे। इसलिए जितना समय की वैल्यू रखेंगे कि थोड़े समय में हमको संपन्न बनना है, कर्मातीत बनना है, पाप समान बनना है। उसमें कल विशेष फर्स्ट टाइमर को कहा, देरी से आए हो विशेष पुरुषार्थ करो। समय थोड़ा है इसलिए फास्ट गति से पुरुषार्थ करो। होता है चलता है नहीं, करेंगे देखेंगे नहीं, मुझे करना है, मुझे ही करना, बहाना नहीं, ये है वो है ऐसा है वैसा है गृहस्थी है हम तो क्या करेंगे, ये नहीं, मुझे करना, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। तो ये जैसे जितनी दृढ़ता होंगी, अटेंशन होंगी, चेकिंग होंगी, हम अपने आप को चेक करके चेंज कर सकते हैं। इसलिए अपने संकल्पों को हमेशा चेक करते रहो कि हम वेस्ट नहीं करते हैं इधर उधर की बातों में। पहले तो बहुत इंटरेस्ट रहता था, अभी देखना है इधर उधर की बातों में, गृहस्थी की बातों में अपना समय शक्ति संकल्प ना गंवाए, पास की बातों का चिंतन नहीं करो। पास को बाबा कहते फुल स्टॉप दे दो, भविष्य के लिए चिंता नहीं करो। प्रेजेंट है पुरुषार्थ का समय, उसको सफल करना है। तो इसलिए हमेशा अपना ध्यान रखना है कि मैं अपना समय संकल्प सब सफल कर रही हूँ, कर रहा हूँ या नहीं। अटेंशन बहुत चाहिए आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि पहले हमको वैल्यू नहीं थी, अभी मालूम पड़ा है समय थोड़ा है, श्वास कभी भी जा सकता है। पहले तो समझते थे चलो वानप्रस्थ अवस्था में भक्ति करेंगे, जवानी में तो खूब कमाई करो मौज करो, अभी ये नहीं, अभी यही अविनाशी कमाई करने में अपना समय लगाना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्र घुमाओ, मन को बिजी रखो। मन को यदि ज्ञान मंथन में स्वदर्शन चक्र घुमाने में बिजी नहीं रखेंगे, याद में बिजी नहीं रखेंगे, सेवा में नहीं बिजी रखेंगे तो क्या होगा? Empty mind, devil shop, फालतू संकल्प आएंगे, गंदे संकल्प आएंगे। इसलिए मन को हमेशा बिजी रखना है, तन को भी बिजी रखो, मन को भी बिजी रखो, तो व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। और बाबा ने ये भी याद दिलाया कि अपना कर्तव्य भूलो मत। कौन सा कर्तव्य है? विश्व परिवर्तन करना। तो ये हम विश्व परिवर्तक है, विश्व कल्याणी है, इसलिए अपना कर्तव्य भूलना नहीं है, वो सदैव याद रखना है कि मैं विश्व कल्याण अर्थ आई हूँ। जैसे बाबा है विश्व कल्याणी है, हमें भी विश्व का कल्याण करना है। तो ये बात जितने बुद्धि में रहेंगे ना, तो उसे क्या होगा? कि हम उस कार्य में बिजी रहेंगे। तो दिलाराम बाप, दिलाराम बाप ने सबके दिल को आराम दिया ना, इसलिए उसको दिलाराम कहते हैं, दिल को आराम देते हैं, दिल को खुश कर देते हैं। जो हम आत्माएं जन्म जन्मांतर से थकी हुई थी ना, भक्ति में बहुत भटक करके इधर उधर धक्के खाकर थक गए थे, बाबा ने हमको अभी आराम दिया, कहा भटकने की दरकार नहीं, स्थूल इधर उधर जाने की दरकार नहीं, एक स्थान पर बैठकर मुझे याद करो, ज्यादा से ज्यादा सेंटर पर जाओ, मुरली सुनो, वंस अय्यर मधुबन आओ, ज्यादा से ज्यादा बाकी आराम करो। बाकी स्थूल नहीं तो क्या करना पड़ता था ना, यात्रा करने जाते थे कितना कष्ट सहन करते थे, कई लोग मर भी गए ना इस बारी बद्री केदार में यात्रा करने गए थे केदारनाथ की, कितने लोग मर गए, मंदिर भी टूट गया, रास्ते भी टूट गए, और कितने हजार आए मर गए, ऐसे हर टाइम होता है, कहाँ न कहाँ यात्रा में कहाँ पुल टूट जाता है, कहाँ नैया डूब जाती है, कहाँ स्टैम्पेड में सब एक दो को कुचल देते हैं। तो हमारी तो कितनी सहज यात्रा है, बुद्धि की यात्रा, परंतु सहज है इसलिए स्लैक नहीं होना है, अलबेले नहीं होना है, नहीं तो क्या होता है, सहज होता है ना तो स्लैक हो जाते हैं, नहीं तो कितनी तपस्या करते थे, भक्ति में कितनी तपस्या करते थे, रात रात जाग कर भजन कीर्तन करते थे। अभी बाबा कहते हैं, ये भी नहीं कहते कि रात को जाग कर योग करो, शुरू शुरू में कराते थे, रात को भी जगा कर योग कराते थे, अभी क्या है वो भी नहीं कहते हैं, बस अमृत वेला उठ कर योग करो। तो सहज ज्ञान सहज योग को हम सुस्ती से ना करें, परंतु चुस्ती रहे, हमेशा चुस्त रहे, अलर्ट रहकर योग करना है। तो जितना हम बाबा की बातों पर सुनकर चलते रहेंगे तो क्या होगा, अपना ही उन्नति होंगी, इसलिए हमेशा अपनी उन्नति का ख्याल करना है और बैलेंस रखना है, क्योंकि क्या होता है, नहीं तो हमारे जीवन में बैलेंस नहीं रहता है, कई बार लौकिक में ज्यादा चले जाते हैं, कई बार अलौकिक में ज्यादा चल जाते हैं, तो इससे क्या होती है, गड़बड़ी हो जाएंगी, इसलिए लौकिक अलौकिक का बैलेंस रखो। और बाबा की मुख्य शिक्षा है, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, देह और देह के संबंधियों को भूलो, पहला लेसन, और रोज बाबा याद दिलाते हैं, वो पक्का हो जाए तो हमारी गाड़ी फास्ट जाएंगी, नहीं तो गाड़ी बीच बीच में रुक जाती है, स्लो चली जाती है, इसलिए अभी सुपर फास्ट ट्रेन रख में चला हूँ, अपना पुरुषार्थ सुपर फास्ट होना चाहिए। अच्छा, तो ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा ऑटोमेटिक या सुनने में आएगा यहाँ? हाँ ऑटोमेटिक होगा। अच्छा, और किसी को कुछ कमेंट या क्वेश्चन है? हाँ शांति। तो क्या है कि जो जो भी मनुष्य आत्माएं ऐसे कुछ विकट परिस्थिति में अचानक और नेगेटिव आशा लेकर शरीर छोड़ती है ना, वो भटकती है और दिन प्रतिदिन ऐसे केसेस बढ़ते जाते हैं, एक्सीडेंटल डेथ और नहीं जितने आजकल तो देखो कितना वैर से एक दो को मार देते हैं, पति पत्नी को, सासू बहु को, ऐसे ऐसे जब मार देते हैं ना तो मरते समय उनों के मन में बहुत वैर भावना रहती है या दुख रहता है, उनको बदला लेने की भावना रहती है ना, तो रिजल्ट क्या होता है, ऐसी आत्माएं भटकती है और फिर जब तक उनकी उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती तब तक वो दूसरा शरीर नहीं लेती है। तो नेचुरली है जिसके साथ हिसाब किताब है उसको तंग करेंगे, परंतु कई बार ऐसे होता है कि हमको भी मालूम नहीं हमारा किसी से हिसाब किताब बना हो, तो इसलिए उस समय समझो जिनको भी अनुभव होता है, क्योंकि कईयों का ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई गला दबाता है, कोई छाती पर जैसे फोर्स देता है, कोई कोई ऐसे नहीं गंदे गंदी मांस आती है कईयों को, नहीं जैसे घर में किसी ने पिशाब किया है, टट्टी किया है, ऐसी गंदी बांस आती है, अलग अलग अनुभव होता है। क्या होता था कि हम लोग मॉरिशस में गए ना, तो वो घर था जिसको भूतिया घर कहते हैं या हॉन्टेड हाउस कहते हैं, ये हाउस था। तो हम लोगों को तो कुछ मालूम नहीं था, परंतु जो स्टूडेंट्स आते थे कहते थे कि यहाँ आप कैसे रहते हो, ये तो भूतिया घर है, आप यहाँ जो भी रहे हैं ना, और यहाँ कितने एक्सीडेंट हो गए रास्ते पर, सामने बस स्टॉप पर ही कईयों के मौत हो गए, हाँ, और इसलिए आपको तो यहाँ नहीं रहने चाहिए था। तो हमारे पास जो काम करने वाली थी वो उसी मकान में काम करती थी, उसने भी अपना अनुभव सुनाया कि एक बार रात को जो घर का मालिक और उसकी बीबी थी पिक्चर देखने गए थे, तो उसको बिठा के गए थे कि घर में बच्चे हैं उनको संभालना, तो कहा कि रात को 12 बजे जैसे कोई कॉरिडोर में पैदल करता ऐसे आवाज आया, जूते का आवाज ठक ठक करते, जैसे किचन में गया, किचन की लाइट ऑन हो गई और किचन में कुछ ठक ठक होने लगा। तो कहा कि वो जो जिस भाई ने मकान बनाया ना, वो मकान बहुत प्यार से बनवाता था, परंतु मकान बनने के पहले वो उसने शरीर छोड़ दिया था, वही भूत बन के वहां घूमता था। हमने कहा हमको तो कुछ हुआ नहीं, क्या है हमारे अंदर जितनी योग शक्ति होती है ना, वो हमको कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए डरना नहीं है। परंतु हम कहते हैं जिसको भी उसका अनुभव होता है ना, जैसे किसी को अनुभव होता है कोई आकृति देखने में आती है काली काली, या कोई कहेंगे कि भाई हमको इतना समझो जैसे कोई गला दबाता है ऐसे अनुभव होता है, हम कहते हैं आप बैठ जाओ, यूजुअली रात में अनुभव होता है, हमने कहा सो नहीं बैठ जाओ और बाबा को याद करो और कहो मैं शिव शक्ति हूँ, मुझे आप कुछ नहीं कर सकते, उस आत्मा को ऑर्डर करो चले जाओ यहाँ से, यहाँ आपका काम नहीं है। तो जितना आप मजबूत रहकर उसको भगाएंगे तो भाग जाएगा, यदि आप डरते रहेंगे ना, कई है कि डरते रहेंगे आज रात को क्या होगा, नहीं सोते सोते समय डरते सोते सोते हैं कि आज रात में वो आ जाएगा तो क्या होगा, तो डरने वाले को डराता ज्यादा है। इसलिए हम कहते हैं रात को सोने के पहले भी योग रख, और कुछ भी फीलिंग होता है उठकर बैठ जा और बाबा को याद कर, और याद रखो मैं शिव शक्ति हूँ। जिसको भी जिस से भी डर है, नहीं कई बार व्यक्तियों से भी हमको डर होता है ना कि ये फलाना आएगा और घर वालों के साथ किसी के साथ संबंध खराब होगा, गुस्सा करेगा, बोलेगा एलफेल या मारपीट करेगा, नहीं आप जितना आप अपने आप को निडर बनकर बैठ जाएंगे ना कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए अपने को हमेशा शिव शक्ति समझो, बाबा के साथ कंबाइन रखो, और बाबा तो है ही रक्षणहार, तो यही याद रखो कि रक्षणहार मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, मुझे कोई कुछ कर नहीं सकता। तो जितनी आप पावरफुल स्थिति में रहेंगे वो कुछ नहीं करेगा, जितना आप डरेंगे, जितना उसके बारे में सोचेंगे, जितना उसके बारे में बातें करेंगे, क्योंकि कई होते हैं ना सबको बोलते रहते आज रात को मुझे ऐसा अनुभव हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो ये बातें करने से फिर औरों में भी डर बैठ जाएगा। इसलिए दादी हमेशा कहती है उसके लिए बोलो नहीं, सोचो नहीं, डरो नहीं, पर शिव शक्ति बनकर घर में ऐसे योग करो। मुझे याद है अपना ज्ञान में एक मेजर भाई था, मैंने तो नहीं देखा, मैं 50s में दिल्ली में था, और वो बाबा का पक्का बच्चा था, बहुत सर्विस करता था, और बाबा उसके घर में भी रहा था, और बाबा उसके घर में था और उसने शरीर छोड़ा। तो ये मेजर है ना, उसने मकान खरीदना था, तो उसने वो मेजर है आर्मी में काम करता है तो डरेगा थोड़ी कोई भूत से, तो उसने एक भूतिया घर खरीदा और उसमें रहने लगा। तो रोज रात को वो लोग भट्टी करने लगे, तो रोज रात को देखते थे नहीं अनेक भूत जैसे काले शेडो नाचते हैं। तो जैसे जैसे वो योग करते गए नंबर ऑफ गोस्ट कम होता गया और धीरे धीरे चले गए। तो डरने से क्या होगा, वो बढ़ेंगे, परंतु वहाँ योग भट्टी करो, जिस घर में ऐसा होता है ना हम कहते हैं योग भट्टी रखो, आप अकेले नहीं कर सकते हैं, ब्राह्मणों को बुलाकर घर में योग भट्टी करो, वायुमंडल शुद्ध करो। और आपको मालूम है दुनिया वाले क्या करते हैं भूत को भगाने के लिए, नो घर के बाहर नीम के पत्ते रखते हैं या नींबू रखते हैं, मिर्ची रखते हैं, और घर में भी धूप वगैरह करते हैं, दैट इज ऑल्सो एक साधन है दुनिया में कि हमको स्थूल सूक्ष्म वायुमंडल साफ रखना है, तो उससे क्या होगा, भूत नहीं आएंगे। बाकी भूतों का अनुभव हमने तो बहुतों का सुना है कहानियां, परंतु हमको खुद को अनुभव नहीं हुआ। हाँ सब आत्मा नहीं करती है, परंतु जिसकी अधूरी इच्छा रह जाती है ना, लोभ की, मोह की, काम विकार की, वो आत्माएं या वैर की भावना रहती है, वो ही भटकेंगी, बाकी नहीं भटकेंगी। तो वो जब उसकी इच्छा पूरी होंगी ना, फिर वो छूट जाएंगे। परंतु क्या है कि यदि हमारा कुछ उनों के साथ पिछला हिसाब किताब है या वीक है, जैसे दुश्मन वार किसके ऊपर करेगा, जो वीक है, तो ये भूत आत्मा भी किसके ऊपर वार करेंगी, जो वीक है, उसके द्वारा अपनी इच्छा पूरी करते हैं। हम लोग बहुत सोचना नहीं चाहिए, नहीं उसका जो जो जिसका हिसाब किताब है, क्योंकि सब तो बुरी इच्छा लेकर नहीं मरेंगे ना, इसलिए सबको भटकना नहीं है, परंतु हर एक का अपने अपने टाइम पर जन्म होता है। क्योंकि क्या होता है कि हमने जैसे हिप्नो थेरेपिस्ट या रिग्रेशन में भी जो अनुभव सुनते हैं, उसमें क्या है, ऐसे जरूरी नहीं है कि माता के गर्भ में सिर्फ 4 मास 5 मास रहेगा बच्चा आत्मा, कोई है जल्दी भी अंत में प्रवेश करती है, तो कोई संयोग जल्द हो सकता है जल्दी भी प्रवेश कर ले, इसलिए वो सारा हिसाब किताब हम नहीं सोचे। परंतु ये है कि भूत आत्मा वही बनेंगी जो समझो नेगेटिव संस्कार से या अंतिम एकदम तीव्र गंदी इच्छा लेके शरीर छोड़ते हैं। बाकी तो जो भी होता है वो तो उनका ही मालूम हिसाब, हमको भी कैसे मालूम पड़े ना, कितने भटकते हैं और कितने कहाँ गर्भ में जन्म लेते हैं या भटकते रहते हैं या उसका क्या होगा जब एक साथ सब शरीर छोड़ते हैं, तो हम लोग उसका बहुत सोचते नहीं हैं। परंतु भूत आत्मा तो वही बनेगा जो ऐसी गंदी इच्छा अपूर्ण होंगी। नहीं नहीं आगे आओ, सामने आओ। आपने सुना सभी ने, इसका सवाल है कि कई लोग कहते हैं 13 दिन तक वो शरीर नहीं लेती है, बट इट्स नॉट नेसेसरी। ब्राह्मणों का ये होता है, जैसे आजकल नहीं बाबा कई बार कहते हैं कि उनको मैं सूक्ष्म वतन में उनको थोड़ा आराम कराता हूँ, पीछे भेजता हूँ, तो उनको बाबा सूक्ष्म वतन में थोड़े दिन रखते हैं। हाँ, तो ये जैसे क्या होता है कि संगम, जैसे बाबा कहते हैं ना, संगम में जो होता है ना उनकी यादगार फिर भक्ति में हो जाती है, इसलिए नॉट नेसेसरी कि वो लोग 13 दिन घूमते रहेंगे। ये सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के लिए है कि जब शरीर हम छोड़ते हैं, और स्पेशली शरीर कष्ट, जैसे बड़ी दीदी थी तो बेहोश कई समय रही, तो बाबा ने कहा मैंने उसको सूक्ष्म वतन में आराम कराया। तो इसी रीत से क्या होता है कि सूक्ष्म वतन में बाबा भी नॉट नेसेसरी 13 दिन ही रखते हैं या तो 4 दिन रखते हैं या क्या रखते हैं, वो हर एक का अपना अपना पाठ होता है और अपनी अपनी समझो लायकी होती है ना। जैसे जो बच्चे बहुत सर्विसेबल है, नेचुरली है, और उसने बहुत सहन किया है अंत में, तो बाबा उनको वहाँ अपने पास सूक्ष्म वतन में आराम कराता। अच्छा, श्राद्ध का क्या होता है? क्या होता है कि श्राद्ध कराते हैं, भावना पहुंचती है, भावना का भाड़ा मिलता है। और समझो, क्योंकि वो अच्छी भावना से करते हैं ना, बाकी देखो आज कोई क्रिया कर्म करते हैं आजकल तो क्या है, दिखावे के लिए करते हैं, करते हैं, ऐसे होता है ना। आजकल तो कोई भावना से नहीं करते हैं, नहीं करेंगे तो दुनिया वाले क्या करेंगे, समाज वाले क्या करेंगे, इसलिए इतना करना ही है, तो वो अच्छी भावना नहीं है। तो दिखावे लिए होता है तो दिखावा उसका हो जाता है। परंतु जो भावना से हम उस आत्मा को खिलाते हैं, पिलाते हैं और उस निमित्त ब्राह्मणों को देते हैं, तो भावना का भाड़ा बाबा कहते हैं न पहुंचता।
प्रश्न तो होंगे सबके, परंतु अभी हम यहाँ समाप्त करेंगे।